मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर की शुरुआत मुख्य विषय से ही कर रहा हूं। मेरे पास हालांकि कुछ खबरें हैं, लेकिन यदि वक्त बचा तो मैं डेफिनेटली उन पर बातें करूंगा, लेकिन आज मुझे मुख्य विषय से ही शुरुआत करने की इजाजत दें। उसका कारण है, कारण यह है कि इसके बाद 3 दिनों का गैप है। सोमवार को आप सबसे फिर मुलाकात होगी, और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि दूसरी खबरों की चर्चा करने के कारण मुख्य विषय पूरा हो ही न पाए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपके एग्जामिनेशन के डेट निकट आ रहे हैं, उसको देखते हुए अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी चर्चा मुझे जितनी जल्दी हो सके कर लेनी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने अर्थशास्त्र की तैयारी के बारे में कुछ टिप्स आपको दिए थे, अगर आप इन्हें टिप्स कहें तो। अब मैं आपको जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और मैं जब टॉपिक्स की बात करूंगा तो उसे थोड़े डिटेल्स में जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, और या यूं कह लीजिए कि जो इकोनॉमी का भी सिलेबस है, उसे समझने में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्योंकि अगर एक ही टॉपिक है और एक ही टॉपिक में पता लगा कि बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो स्टूडेंट्स सब टॉपिक्स में किस किस को पढ़ें, किस किस को छोड़ें, किसको बहुत ज्यादा महत्व दें, किसको थोड़ा कम महत्व दें, इसमें थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव रहा है। तो इसीलिए मैं टॉपिक्स और उस टॉपिक्स के अंदर जो दूसरी जो सब टॉपिक्स होंगे उन पर भी थोड़ी बातें करूंगा। बातें क्या करूंगा, बस गिनाऊंगा भी आपको, बस इशारे के तौर पर बताऊंगा। आप थोड़ा सा बस ध्यान से सुने ताकि आप अपने साथ न्याय कर सकें। और इनफैक्ट सच ये है कि अगर आप अपने साथ न्याय कर सकेंगे तो मेरे डेली ऑडियो लेक्चर के साथ न्याय हो सकेगा, और मेरे डेली ऑडियो लेक्चर के साथ अगर न्याय हो सकेगा तो डेफिनेटली मेरे साथ भी न्याय हो सकेगा। तो दोस्तों, आइए अब टॉपिक्स की बात करते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय पर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए, इससे एक आध प्रश्न आ ही जाता है। इसके तहत क्या है, जैसे GDP आप खूब सुनते हैं, GNP, NDP, NNP, ये जो राष्ट्रीय आय के गणना के जो मापदंड है, जो तरीके हैं, जो सूत्र हैं, इन्हें आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे कभी कभी इन पर प्रश्न ही पूछ लिए जाते हैं कि आप ये क्या है बताइए, या इनमें क्या अंतर है ये बताइए। तो इसे समझकर तैयार कीजिएगा, और इसलिए भी क्योंकि ये अर्थशास्त्र की कहीं ना कहीं नींव का काम कर रहे होते हैं। जब भी आप देखिए आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे तो ये शब्द आएंगे, तो आप उस आर्टिकल को कैसे समझ पाएंगे अगर आप इनके बारे में ही नहीं जानते हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना चाहिए। फिर दोस्तों, राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, इस पर भी 2-3 साल पहले एक प्रश्न आया था, और यह भी मालूम होना चाहिए आपको। इसके 2 प्रकार हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, और दूसरा है कंट्राडिक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। इन दोनों को आप देख लीजिएगा, दोनों में क्या अंतर है। फिर यह है कि अगर मांग में वृद्धि करनी है, मान लीजिए सरकार चाहती है कि मांग में वृद्धि हो, और मांग में उसे इसलिए वृद्धि करनी है ताकि उत्पादन बढ़ सके। जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तभी तो उत्पादन बढ़ेगा ना, उस मांग की पूर्ति के लिए। तो फिर अगर सरकार चाहती है कि मांग में वृद्धि हो तो उसके लिए क्या राजकोषीय उपाय किए जाने चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, या सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर भी आप देख लीजिएगा। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है, ये मैंने सामान्यतया अनुभव किया है। तो आप बकायदे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या होते हैं, कब इसकी स्थापना हुई है, मौद्रिक नीति तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी, मौद्रिक नीति के तहत आप मॉनेटरी पॉलिसी जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आप SLR, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, ये भी एक साल पूछा गया था, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट्स, फिर मौद्रिक और राजकोषीय नीति के संबंध में रिजर्व बैंक का क्या रवैया रहता है, दोनों के क्या संबंध होते हैं, इन पर भी आपको जानकारी लेनी चाहिए। बैंकिंग सर्विसेज, बैंक सेवाएं, अब ये सीधे नहीं है कि बैंक के क्या काम होते हैं, नहीं, आपको बैंकिंग सर्विसेज के तहत जो 3-4 तरह के अलग अलग बैंक हैं उनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आर्टिकल्स को समझने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे अनुसूचित बैंक, जैसे आप शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, फिर होते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थान जिसे आप कहते हैं, और जो दूसरे तरह के बैंक होते हैं जैसे नाबार्ड, एक्सिम, मुद्रा बैंक, ये सब जो बैंक हैं इनके बारे में भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है बजट। बजट की जो शब्दावलियां होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बजट के आंकड़ों पर तो अब प्रश्न सामान्यतया नहीं पूछे जाते, जब तक कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा सरकार ने न सामने रखा हो। तो इसकी जो शब्दावलियां होती हैं वो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, जैसे राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीप्ट्स जिसे आप कहते हैं, राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीप्ट्स, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर आदि आदि। लेकिन यही बात खत्म नहीं हो गई है, बजट में और भी शब्दावलियां होती हैं। मैं तो केवल उदाहरण के रूप में ये आपके सामने चार शब्दावलियां रख रहा हूं, तो इस पर भी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। बजट जब आप तैयार कर रहे होंगे तो उसी के अंतर्गत जो टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और डेफिनेटली उसी में आएंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे भी आपको देख लेना चाहिए। दोस्तों फिर है मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। इसे मैं अर्थव्यवस्था का प्राण मानता हूं। अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थशास्त्र तो ही है, अर्थशास्त्र में तो मांग और पूर्ति का नियम है, लेकिन जिस तरह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था काम करती है, जिस साइकिल में चलती है, उसका यह ऑक्सीजन है मांग एवं पूर्ति। तो मांग एवं पूर्ति का जो टॉपिक है ये केवल आपको याद नहीं करना है, बल्कि बहुत बहुत और बहुत अच्छे तरीके से समझना है, घुमा फिराकर समझना है, बहुत ही व्यावहारिक रूप में समझना है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आती है, ऊपर से वो सीधे सीधे स्ट्रेट दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको डिमांड एंड सप्लाई दिखाई दे जाएगी। और याद रखिए कि जब मैं डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहा हूं तो उसे आप केवल और केवल वस्तुओं तक सीमित मत रखिए कि हम किसी वस्तु की मांग करते हैं और फिर उस वस्तु की आपूर्ति होती है, उसको आप फैला दीजिए। जैसे अगर हम बैंक के संदर्भ में करें तो बैंक में जाकर के भी तो हम कुछ मांग करते हैं ना, तो मांग क्या है, करेंसी की मांग हम कर रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी है ही कुल मिलाकर के ये कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है करेंसी की सप्लाई और को प्रभावित करता है, उसके डिमांड को प्रभावित करता है, बस खत्म हो गई बात। तो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को आप बहुत व्यापक रूप में समझिएगा, तभी जाकर के आप यूं कह लीजिए कि अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे। और अगर आपने इसे समझ लिया ना, तो मान करके चलिए कि प्री में आपके 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्के हैं कि आप सही ही करके आएंगे। हाँ, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके मेंस पर भी पड़ेगा। मेंस में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें मांग और सप्लाई मौजूद होती है, तो वहां भी आप अपने उत्तर को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो दोस्तों इन्फ्लेशन आप कहते हैं, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति भी मांग और आपूर्ति से प्रभावित होती है, वही है ही वो मुद्रास्फीति, डिमांड एंड सप्लाई। फिर मुद्रास्फीति के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे अपस्फीति है डिफ्लेशन, विस्फीति है डिस इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति है हाइपर इन्फ्लेशन। इनके बारे में भी आपकी समझ होनी चाहिए, और फिर मुद्रास्फीति क्यों होते हैं और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं वो तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रभाव को लेकर के मैंने देखा है कि अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव में फिर वो वर्ग पर पूछते हैं, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सैलरीड क्लास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धनी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके से वो पूछते हैं। हो सकता है कि किताबों में आपको सीधे क्लास के आधार पर प्रभाव न पढ़ने को मिले, लेकिन अगर आप एक बार डिमांड एंड सप्लाई को समझ लेंगे तो फिर आप आंसर दे लेंगे, ये मैं आपको इंश्योर करना चाहूंगा। दोस्तों फिर है इकोनॉमिक साइकिल, आर्थिक चक्र, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि जो पूरा का पूरा जो साइकिल है इकोनॉमी का वो किस तरीके से काम करता है। इसके तहत जैसे प्रतिसार है, रिसेशन जिसे आप कहते हैं, मंदी है जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, सुस्ती है, स्लो डाउन, उछाल, बूम, ये सब आर्टिकल्स में आप पढ़ते रहते होंगे न्यूज़पेपर में, इनकी बहुत अच्छी समझ आपके पास होनी चाहिए। फिर सिक्योरिटी मार्केट जिसे आप शेयर मार्केट कहते हैं, उसके तहत पूरा का पूरा शेयर मार्केट, पूरी के पूरे सिक्योरिटी मार्केट, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे सिक्योरिटी मार्केट जब आप तैयार कर रहे होंगे, बॉन्ड्स, डिबेंचर, बुल्स एंड बियर्स, अथोराइज्ड कैपिटल, इशूज कैपिटल्स, इशूड कैपिटल्स, इन सब के बारे में आपकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और जब आप शेयर मार्केट की तैयारी कर रहे होंगे तो डेफिनेटली फिर आपको मालूम होना चाहिए कि सेबी क्या होता है। सरकारी ऋण के जो उपकरण है दोस्तों, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल है, बॉन्ड्स हैं, ये सब भी आपको देख लेना चाहिए। कुछ इस तरह की शब्दावलियां होती हैं जो अक्सर आर्टिकल्स में आपको पढ़ने को मिलती होंगी, जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन, जिसे आप कहेंगे फिजिकल स्टिमुलस, मंदी यानी कि मेल्ट डाउन, वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन, समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट, खुली और बंद अर्थव्यवस्था ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी, ये क्या होती है इनकी समझ आपके पास होनी चाहिए। खासकर जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इकोनॉमिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो। इसी तरह से दोस्तों फॉरेन जो करेंसी है, विदेशी मुद्रा, कैसे उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, कीमत क्या, विनिमय दर कहना चाहिए, विदेशी व्यापार हमारा जो फॉरेन ट्रेड है इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस पर मैंने देखा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसे आप भुगतान संतुलन कहते हैं, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए कि करेंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। और मैं अभी आपको जितनी भी बातें बता रहा हूं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत गहराई और विस्तार में उदाहरण दे दे करके मैंने इन सब के बारे में समझाने की कोशिश की है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हों कि अरे हम कैसे समझेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई संदेह हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार इत्मीनान के साथ फिर से उन लेक्चर्स को सुने, डेफिनेटली आप उसे समझ जाएंगे, मैं आपको इंश्योर करता हूं। इसी तरह से दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि FDI क्या है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसे आप कहते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसे कहते हैं, FPI, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, ये मालूम होने चाहिए। फिर है फ्रेंड्स इंडेक्स। इंडेक्स में सामान्यतया वही कि थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इनके बारे में जानकारियां होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बताए हैं और ये सारे टॉपिक्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। अभी मैं इकोनॉमी के टॉपिक्स आपको नहीं बता रहा हूं, इस पर अभी आप फिलहाल काम करें, फिर इकोनॉमिक्स की तैयारी को लेकर के और भी कुछ बातें मुझे करनी है तो उसके बारे में हम लोग अब आगे बात करेंगे। फिर हर 3 दिनों का वक्त आपके पास है, खासकर 3 दिनों का आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें, इस दृष्टि से मैंने जो टॉपिक्स हैं वो और फिर उनके जो डिटेल्स हैं वो थोड़े आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और दोस्तों अब 3 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, नमस्कार।